اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں رینجرز پر کیے گئے 2 مختلف حملوں میں 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد ہلاک، جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کو سندھ کے ضلع کھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب اس وقت دھماکہ ہوا جب اہلکار مارکیٹ میں خریداری کے لیے موجود تھے۔ حملے میں ایک شہری سمیت 2 رینجرز اہلکار ہلاک، جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر سول ہسپتال گھوٹکی منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایک اور واقعے میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 10 کے ایک اسکول پر اس وقت دستی بم حملہ کیا گیا جب وزیراعظم کے احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد میں رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعے میں ایک شخص جاں بحق، جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق احساس پروگرام کے عارضی دفتر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا۔ اسسٹنٹ پولیس سرجن عباسی شہید ہسپتال ڈاکٹر محمد سلیم کے مطابق ہلاک ہونے والے 25 سالہ نوجوان کی شناخت کاشف کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا لدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے جمعے کو مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ریفرنس کا لدم قرار دینے کی درخواست بھی منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر صدارتی ریفرنس کو کلدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے ٹیکس معاملات ایف بی آر کو بھیجوانے کا حکم دیا، جبکہ بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجوانے کی مخالفت کی۔ 7 ججز نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجوانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر 60 دن کے اندر تحقیقات مکمل کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر حکام تحقیقات کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو جمع کرائیں گے، جو یہ تفصیلات سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے کریں گے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ نے ایک اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی وزیر خارجہ وانگ یو کی طرف سے بلائی گئی بیلٹ اینڈ روڈ ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوئے اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 136 اموات کے بعد کل اموات کی تعداد 3,229 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں 4,944 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں پہلی مرتبہ ایک روز کے دوران 13,500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی شہر چنائے اور 3 اضلاع میں 30 جون تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسوں میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کی سفارش پر حکومت نے ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جہاں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کرونا وائرس کے وبا کو روکنے کے لیے ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کی مہم رواں برس مارچ کے مہینے سے معطل ہے۔ صرف صوبہ خیبر پختونخواہ میں اپریل کے مہینے میں 80 لاکھ بچے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہے ہیں۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک بھر میں پولیو اور دیگر انتہائی موذی بیماریوں کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 346 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور ملک میں اب کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 27,878 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت کے مطابق وائرس کے نتیجے میں اب تک 548 اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں گھروں میں قرنطینہ کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے انسانی حقوق کے آزاد کمیشن نے کہا ہے کہ گھروں کے اندر بند رہنے کی وجہ سے خواتین کی طرف سے تشدد کی شکایات کا اندراج کرانے کے مواقع بھی محدود ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अस्सलामु अलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। इस वक्त दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद हैं और तमाम तालीम स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन दी जा रही है। इस ऑनलाइन तालीम के अंदाज पर और इसकी इंतजामी सूरत हाल पर यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों की जानिब से इतराजात और एहतजाज सामने आया है। आज के प्रोग्राम में हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान तालिब इल्मों और यूनिवर्सिटियों को जिन मसाइल का सामना है और उनसे निपटने के लिए वो जो कोशिशें कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे कुछ तालिब इल्मों की गुफ्तगू के साथ। सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की तालिबा, सेकेंड सेमेस्टर की तालिबा गुलाम हफ्सा से, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त तालिब इल्मों को ऑनलाइन एजुकेशन में क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और वो किस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हफ्सा।
वालेकुम अस्सलाम।
हफ्सा, कुछ बताइए कि क्या इस वक्त मसाइल हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जिस वक्त ये वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं घरों में?
सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी। बट कुछ चीजें हैं जो कि वाकई स्टूडेंट्स के एंड पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि हम लोग की बहुत सारी डिग्रीज ऐसे हैं कि प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे पास इंक्लूडेड होती है, कोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि जिसमें हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते में जो फोटोग्राफी के कोर्सेज हम लोग के सिलेबस में होते हैं, वीडियोग्राफी के होते हैं, इनकी सेटिंग्स और इनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है, हम थ्योरी तो पढ़ सकते हैं बट हम लोग इनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है लर्निंग में इस वजह से। उसके अलावा जो एक हमारे पास लाइक इशू आ रहा है वो है टेक्निकल असिस्टेंस, लैक ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस। काइंड ऑफ के हम लोग एक न्यू मोड में शिफ्ट हुए फ्रॉम मैनुअल एजुकेशन, फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टू ऑनलाइन एजुकेशन। हमारे पास प्रॉपर एप्स, हमारे पास प्रॉपर एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। हम ट्रायल बट एक कहें कि हमारे पास एवेल्युएशन गैप जरूर आ गया है ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम से। हम लोग को बहुत अच्छे से एक चीज का आइडिया कि जब हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें हम टीचर के सामने बैठ के हम लोग एक फिक्स टाइम में जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें से हमें एवेल्युएट किया जा रहा होता है, एक सारा लाइक नजर रखी हुई होती है उन्होंने कि जो जो हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में ये हो रहा है कि आपको पेपर्स लाइक टर्म पेपर लिख रहे हैं, आप स्विच पेपर्स लिख रहे हैं, वाइवास लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हुए कि स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के ऑनलाइन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं और किसी से कह के पेपर्स बनवाने के। बहुत हमारे पास जिस तरह 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में थे तो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हमें बाजार से बनी हुई मिल जाती थी, तो उसका ये पेपर्स भी बनवाए जा सकते हैं, बनवाए जा रहे हैं। तो इस वजह से एवेल्युएशन गैप आ रहा है। तो ये नहीं है कि आप बगैर एग्जाम्स के प्रमोट कर दें हमें, बट इस सिस्टम को रिकंसीडर किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जस्टिफाइड मार्किंग हो सके और जो स्टूडेंट वाकई मेहनत करे उनको उनका हक मिले।
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया गुलाम हफ्सा। आप सरगोधा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं मास कम्युनिकेशन की और आपने बड़ी तफसील से उन मसाइल पर रोशनी डाली जो इस वक्त स्टूडेंट्स को दरपेश हैं और जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन आप चाहती हैं कि सामने आना चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की एक तालिबा जो मास्टर्स कर रही हैं, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान किन मसाइल का शिकार हैं और ख़ासतौर पर फीस और चार्जेस जो उनसे वसूल किए जा रहे हैं उस बारे में उनकी यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है और वो जनरली इस बारे में क्या समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम निमरा नवाज़ साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम
निमरा, कुछ बताइए।
बिल्कुल
کیا صورت حال ہے اس وقت آن لائن ایجوکیشن کی، اور خاص طور پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت کس طرح ہے کہ ان سے وہ چارجز لیے جا رہے ہیں جو وہ اویل نہیں کر رہے فیسلٹیز؟
سب سے پہلے تو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ ٹائم فار آل دا پیپل اکراس دی گلوب. سب ایک پریشر میں ہیں اور لائک دے آر کلو لیس اینڈ سم پیپل آر یو نو فیلنگ لائک دے آر اسٹک ان دا مڈل آف نو ویئر. تو سب کے لیے یہ ایک انسرٹن کنڈیشن ہے اور ایسی کنڈیشن پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. تو آبویسلی اس کا ہر سیکٹر پر ہر پرسن پر ایک امپیکٹ ایک ڈفرنٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑ رہا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر اسٹوڈنٹس سفر کر رہے ہیں. اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل اپنی ڈگری کے اختتام پر ہیں، جو کہ لاسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹس ہیں، فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو کچھ یو نو مہینے تک ڈگری مل جانی اور پھر انہوں نے جاب مارکیٹ میں جا کے اپلائی کرنا ہے، تو سب سے زیادہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو سب سے بڑا مسئلہ آن لائن ایجوکیشن کو لے کر ہے، کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے اور انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں دیکھا گیا ایسا سسٹم. تو سب سے بڑھ کر جو میری نظر میں مسئلہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور کنیکٹیویٹی ایشو کا ہے، جو کہ ایک آن گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت دور دراز علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، جو کہ جن کے پاس اپنا ٹیکنالوجی گیجٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں ہیں، پیکیجز نہیں ہیں، ڈیوائسز نہیں ہیں، ایک ان کے پاس اپنا پرائیویٹ اسٹڈی ایریا نہیں ہے، جس سے آبویسلی ان کی موٹیویشن لیول، ان کا پازیٹیوٹی لیول، ان کی سینیٹی لوور ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ جو میری نظر میں ہے وہ ایک فی کا ہے، کیونکہ سٹ ان کلاس جو ان پرسن کلاس ہوتی ہے جس میں ون ٹو ون ٹیچر اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کلاس کا اور آن لائن کلاس کا آبویسلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آن لائن کلاس از اے گڈ سبسٹیٹیوٹ بٹ اٹ کین ناٹ بی اے پرماننٹ ریپلیسمنٹ فار دی سٹ ان پرسن کلاسز. تو آبویسلی فیسلٹیز نہیں ہیں ویسی. تو جہاں تک بات ہے چارجز کی، چارجز ویسے ہی لیے جا رہے ہیں جیسے کہ سٹ ان کلاس یو نو پرسن ٹو پرسن کلاس رومس میں دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہی سارے چارجز ہیں جس میں لائبریری کی فی ہے، جس میں ہاسٹل کی فیس ہے، جس میں ایگزامینیشن اور بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں. لائک دیئر از اے ہیوج لسٹ آف ویریس چارجز اینڈ فنڈز، اور جو کہ ایک بہت یو نو گرانڈ ٹوٹل بنا رہا ہے فار دا اسٹوڈنٹس. تو وہ ریسیٹس دی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور جیسے کہ پوری دنیا میں یہ کووڈ 19 کا ایشو ہے، اٹس ناٹ جسٹ پاکستان اور اٹس جسٹ ناٹ ون ٹو اور تھری کنٹریز، لائک اٹس بین اسپریڈنگ آل اکراس دی گلوب. تو سب یہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے جابس نہیں ہیں، ان کی کاروبار ختم ہے یا کم ہے، تو آمدنی نہیں ہے، اور بہت ساری فیملیز فائنینشیل اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہیں. تو اس فائنینشیل کرائسس کا بھی ایک سائیکولوجیکل بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ جن کو وی نیڈ ٹو ایڈریس، اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ فی کو ایٹ لیسٹ وہ سارے ایکسٹرا چارجز کو اسٹوڈنٹس کے لیے کٹ ڈاؤن یا ریلیف دے دینی چاہیے جو کہ وہ یوز نہیں کر رہے رائٹ ایٹ دا مومنٹ، جس میں سب سے بڑھ کے ان کے ہاسٹل کے، لائبریری کے اور دوسرے چارجز ہیں. جسٹ یا تو ٹوٹل یو نو اس کو ختم کر دیا جائے، یا پھر ان ایکسٹرا چارجز کو ایٹ لیسٹ ایکسکلوڈ کر دیا جائے.
نمرہ، کچھ اساتذہ کا یہ کہنا ہے، کچھ جو اس مظاہرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ اس لیے مظاہرے اس لیے نہیں کر رہے کہ فیسوں کا مسئلہ ہے، بلکہ اصل میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان لیے بغیر اگلی کلاسوں میں چڑھا دو، تو اصل میں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کہ تاکہ انہیں امتحان نہ دینا پڑے، اور اس کی جواز میں یہ ایک ایشو یہ بھی ساتھ انہوں نے نفی کر دیا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، کہاں تک صداقت ہے؟
بالکل ٹھیک ہے. میرے آبزرویشن میں اور میرے پوائنٹ آف ویو میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے جینوئنلی بہت سارے پرابلمس ہیں، اور وہ پرابلمس میں نے ہائی لائٹ بھی کیے، جیسے کہ فار آف پلیسز کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی ریسورسز گیجٹس ان چیزوں کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بہت قلیل تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ واقعی اس کو ایز اے فن ایکٹیویٹی اور وہ ایک سائٹ وے آؤٹ لے رہے ہیں, پروموشن ہو جائے گی اینڈ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ورک ہارڈ اور لائک اٹس ایزی وے آؤٹ فار دیم پروموشن. لیکن وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت بہت کم ہے اور جینوئن ایشوز میرے نزدیک بہت زیادہ ہیں, جن میں میرے پرسنل جاننے والے اور بہت سارے اور بھی لوگوں کے جو ہیں وہ ایشوز ہیں جو کہ وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ اپنی وائس ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو اگر آن لائن ایگزام ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ یونیورسٹی ایک ٹرانسکرپٹڈ وے میں ایک ڈیٹیلڈ فلی گائیڈڈ پالیسی جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرے کہ اس اس طریقے سے اس اس پہلو سے وی آر گوئنگ ٹو ایویلیویٹ یو اینڈ اسیس یو اور اٹس گوئنگ ٹو بی فل پروف اینڈ فیئرلی مارکڈ. تو اٹس دی بیسٹ پالیسی ان دس ٹائم آف کرائسس. اور اگر ایسا نہیں ہے اور ایسا کرنے میں اساتذہ یا یونیورسٹیز یا سسٹم ساتھ نہیں دے رہا تو پھر پروموشن کی طرف پروموشن ہی ایک واحد حل بچتا ہے اس صورتحال میں.
تو پروموشن ویسے آپ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ پروموشن یوں ہی ہو جائے جب تک کہ سسٹم صحیح نہ ہو.
بالکل بالکل, کیونکہ ہم چھٹی ساتویں میٹرک کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, وی آر پروفیشنل, وی آر یو نو وی آر لیکن فار پروفیشنل ڈگریز اور کچھ ہی مہینوں سالوں بعد ہم نے پروفیشنل مارکیٹ میں جانا ہے, لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, چیزوں کو ڈیل کرنا ہے, آرگنائزیشنس چلانی ہے, ادارے چلانے ہیں. تو ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی اور وہ صلاحیت ہونی چاہیے. تو ہمیں ایک فیئر پروسیس کے تھرو نکل کر آنا چاہیے. لیکن اگر وہ پروسیس اتنا اس طرح سے ٹف یا اس طرح سے فیئر نہیں ہے جس طرح کے عام صورتحال میں ہوتا تھا, تو اس اگر وہ سب کچھ نہیں ویسا کیا جا سکتا تب پروموشن کی طرف دیکھا جائے. لائک میرے نظریے میں پروموشن کو سب سے لاسٹ بیسٹ آپشن کنسیڈر ہونا چاہیے.
تو اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جائے, انتظار کیا جائے کووڈ کے جانے کا تب.
میرے نظریے سے ڈیلے از لائک ڈینائنگ ایوری تھنگ. آپ کو نہیں پتا, نو ون نوز وین دا سچویشن, وین دس ٹائم آف کرائسس از گوئنگ ٹو اینڈ. اس کا کسی کو علم ہی نہیں. بڑے سے بڑے سائنسدان, بڑے سے بڑے پولیٹیشین, بڑے سے بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ, دے آل آر کلو لیس اینڈ ہیلپ لیس ان دس ٹائم آف کرائسس. تو ہم کوئی ایک ایگزیکٹ فکسڈ ڈیٹ ٹائم پیریڈ تو ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے اس سچویشن میں, اس انسرٹن کنڈیشن میں. تو میرے خیال سے ڈیلے از ڈینائنگ, وہ جیسے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائنگ. تو جتنا آپ چیزوں کو ڈیلے کرتے جا رہے ہو, یو آر جسٹ ڈینائنگ دی بیسک فیکٹس اینڈ پرابلمس. تو جتنا جلدی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے تو اتنا ہی جلدی اسٹوڈینٹس کے حق میں اور سب کے حق میں بہتر ہوگا. جیسے میں اپنی خود کی مثال دوں, آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف لاسٹ سیمسٹر. میری آن لائن کلاس کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا, میرے مڈ ٹرم ایگزامس ہو گئے, میرے سیشنلز ہو گئے, آئی سبمٹڈ مائی اسائنمنٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آئی اٹینڈڈ لیکچرز. ناؤ آئی ایم جسٹ ویٹنگ کلولیسلی اباؤٹ دی فائنل ڈیسیژن آف فائنل ایگزامس کہ وہ کب ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے, کیونکہ یہ سب کچھ اسٹوڈینٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, اداروں کے لیے, پالیسی میکرس کے لیے سب کچھ نیا ہے. تو ہم سب کلو لیس ہیں اور میں صرف اس چیز کا انتظار کر رہی ہوں کہ 50 نمبر کا مجھے ایک فائنل ایگزام دینا ہے, دین ڈگری ول بی ان مائی ہینڈ. اور وہ 50 نمبر کا ایگزام کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ایک بہت بڑی مسٹری بن چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ مہینوں بعد جابس کے ایڈورٹائزمنٹس آ جائیں گے, فردر ہائر ڈگریز کے ایڈورٹائزمنٹس آ جائیں گے, ایم فلز کے, پی ایچ ڈیز کے, اسکالرشپس کے, جس کے لیے آپ کو اپنی ساتھ فائنل سیمسٹر کی ٹرانسکرپٹ لگانا ضروری ہوتی ہے. تو वो सब कुछ के लिए वी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यू नो सीनियर सेमेस्टर्स लास्ट सेमेस्टर्स वुड बी इन एलिजिबल टू अप्लाई इवन. तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं समझती हूँ कि एड्रेस किया जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल.
बेहद शुक्रिया निम्रा नवाज, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आप सरगोधा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं. आपने हमारी बातों के जवाब दिए और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाए, दुनिया तक पहुंचाए, आपका बेहद शुक्रिया. हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एक तालिबिल बदरुल इस्लाम, मैथ्स के दूसरे सेमेस्टर में हैं. तो लीजिए उनको सुनते हैं.
लाइब्रेरी वगैरह की फीसेस हैं, ट्रांसपोर्ट की फीसेस हैं और हॉस्टल की फीसेस तो ले ली गई हैं, पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं है. अब हम तो घर बैठे हैं, हमारे से ये फीसेस क्यों ली गई हैं, हमारा ये कहना है. ज्यादातर तालिबिलों का यही कहना है.
और दूसरा जो दूसरे जो इश्यूज पेश आ रहे हैं वो क्या हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में इस वक्त?
उनमें ये है कि पहला तो ये है कि ज्यादातर देहात के इलाके से हैं लोग, विलेज के इलाके से, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है और पाकिस्तान का इंटरनेट भी बहुत कमजोर है. तो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई बहुत मुश्किल काम है. दूसरी बात है कि बहुत कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स है और ज्यादातर लेक्चरर्स को इतना तजुर्बा भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, ना स्टूडेंट को है कोई एक्सपीरियंस ऑनलाइन पढ़ने का.
आप लोगों ने अपना इशू पेश किया अपने यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटी है?
हाँ, हमारी यूनियन ने एहतियात तो रिकॉर्ड कराया पर HSC वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे.
तो बेहद शुक्रिया बदरुल इस्लाम, आपने मसला बताया. आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फोर्थ सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं मैथ्स के, और आपने जो मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं उनको बयान किया. आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में के लिए वक्त निकाला. इसी बारे में गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन पर सरगोधा से गुलाम हफ्सा, जो मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हैं, सरगोधा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और सेकेंड सेमेस्टर में हैं. उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो किस हाल में हैं और क्या उनकी वो शिकायत हैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया से. अस्सलाम वालेकुम गुलाम हफ्सा.
वालेकुम अस्सलाम.
आप सब कुछ बताइए कि क्या इस वक्त मसाइल हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जिस वक्त ये वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं घरों में?
सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी. बट कुछ चीजें हैं जो कि वाकई स्टूडेंट्स के एंड पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं. सबसे पहले अगर देखा जाए कि हम लोग की बहुत सारी डिग्रीज ऐसे हैं कि प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे पास इंक्लूडेड होती है. कोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि जिसमें हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है. एक मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते में जो फोटोग्राफी के कोर्सेज हम लोग के सिलेबस में होते हैं, वीडियोग्राफी के होते हैं, इनकी सेटिंग्स और इनको कैसे ऑपरेट करने, कैसे काम करने, हम थ्योरी तो पढ़ सकते हैं बट हम लोग इनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस में. तो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है लर्निंग में इस वजह से. उसके अलावा जो एक हमारे पास लाइक इशू आ रहा है वो है टेक्निकल असिस्टेंस, लैक ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस. काइंड ऑफ के हम लोग एक न्यू मोड में शिफ्ट हुए फ्रॉम मैनुअल एजुकेशन, फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टू ऑनलाइन एजुकेशन. हमारे पास प्रॉपर एप्स, हमारे पास प्रॉपर एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम नहीं है. हम ट्रायल हिट मेथड पे चल रहे हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आ रही है.
अच्छा, और ये जो मसला है कि कुछ स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश है कि उनको बगैर इम्तहान के पास कर दिया जाए, क्या आप भी इस मौकफ के हामिल हैं?
मैं इस मौकफ के बिल्कुल हामिल तो नहीं हूँ, बट एक कहने के हमारे पास एवेलुएशन गैप जरूर आ गया है ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम से. ये नहीं है कि आप बगैर एग्जाम्स के प्रमोट कर दें हमें, बट इस सिस्टम को रिकंसीडर किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जस्टिफाइड मार्किंग हो सके और जो स्टूडेंट वाकई मेहनत करे उनको उनका हक मिले.
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया गुलाम हफ्सा. आप सरगोधा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं मास कम्युनिकेशन की और आपने बड़ी तफसील से उन मसाइल पर रोशनी डाली जो इस वक्त स्टूडेंट्स को दरपेश हैं और जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन आप चाहती हैं कि सामने आना चाहिए. आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को ये शिकायत हैं कि यूनिवर्सिटियाँ उनसे फीस ले रही हैं कैंपस के दौरान भी या कैंपस की सर्विसेज की भी, जबकि उनको वो कैंपस की सर्विसेज फराहम नहीं की जा रही. इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं जो वो सामने ला रहे हैं कि उनको जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें कुछ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इस बारे में गुफ्तगू के लिए हमने इस वक्त प्रोग्राम में शामिल किया है एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर जनाब सरोज हशमत लोधी को, जो इस पर टेलीफोन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरोज हशमत, अस्सलाम वालेकुम सरोज हशमत लोधी साहब।
अस्सलाम वालेकुम यस्मीन साहिबा, आप खैरियत से हैं?
मैं ठीक हूँ। तो बताइए कि ये मसला क्या दरपेश है? स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ उनसे फीस ले रही हैं कैंपस की सर्विसेज की, जबकि उनको वो सर्विसेज अब दस्तयाब नहीं हैं। तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम पूछते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के दूसरे इश्यूज क्या हैं जो यूनिवर्सिटियों को इस वक्त दरपेश हैं। जी
देखिए, एक चीज हमारे सबसे में है कि पूरी दुनिया एक इंतहाई अनयूजुअल हालात से गुजर रही है, और ऐसे हालात में जाहिर है कि जो कंडीशंस है वो बड़ी डिफरेंट है। ना किसी को दुनिया भर में इसका तजर्बा है और ना ही किसी के पास कोई सलूशन है। अब जहां तक फीसों का सिलसिला है तो इसमें एक चीज अहम है कि एनईडी यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, हमने अपनी फीस में कंसेशन का अनाउंसमेंट किया है और उसमें मुख्तलिफ तरह के हैं। एक तो ये कि हम 20% रिडक्शन दे रहे हैं बच्चों को, दूसरे ये कि जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे सेमेस्टर में। फिर तो फीस के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इंटरनेट चार्जेस हैं वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं, चूंकि किताबें ओवर ड्यू हो गई हैं लाइब्रेरी की और जाहिर है कि कोई आ नहीं सकता, तो इस सिलसिले में जाहिर है बच्चों से कोई फाइन भी नहीं लिया जाएगा उनके, दिस इज बियॉन्ड एनीबडीज कंट्रोल।
लेकिन ये जो स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं, नहीं ये कुछ स्टूडेंट जो शिकायत कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है?
थोड़ा सा जी देखिए, थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़े से इसमें हौसले की जरूरत है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो एटलीस्ट ये किया है कि उन्होंने बाकायदा कानून पास किया, वो कानून तमाम तालीमी इदारों पर लागू है और उसकी वजह से जाहिर हम पर लागू है कि हम ये कंसेशंस बच्चों को दें। यहाँ इसके इसमें एक चीज की को और करने की जरूरत है कि जहाँ जाहिर है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो फिजिकल रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती है, लेकिन भारत यूनिवर्सिटी के अखराजात हैं, जो लोगों की तनख्वाहों का जो खर्चा है वो सबसे बड़ा है, और आमतौर पर यूनिवर्सिटी में 50 से लेके 80% तक जो खर्चा है वो ग्रांट एंड एड पे आता है, लेकिन बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज जो है वो 50 से लेके 60% तक जो खर्चा है तो ग्रांट एंड एड आता है, 50 से 40% वो अपनी सोर्सेस से जनरेट करती है, जिसमें सबसे बड़ी सोर्स जो है वो फीस है। तो इन हालात में जाहिर है कि लोगों को तनख्वाहें भी देनी है और दीगर अखराजात हैं, मेडिकल के अखराजात वक्त के साथ बढ़ रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज को हमें कवर देना होता है, तो हमारे अखराजात में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है, तो जाहिर है कि खर्चा कहीं से तो पूरा होना है। अब जाहिर है बच्चों का भी एक लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत से काम लें, डिफिकल्ट टाइम है, बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर कि ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज विल कम अप विद समथिंग टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स।
यानी आप वो जो स्टूडेंट्स हैं जो मुजाहरे कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनको आप अभी कह रहे हैं कि वो इंतजार करें?
देखिए ऐसा है कि बच्चों ने थोड़ा सा ओवर रिएक्शन कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वजह ये कि एहतजाज से मसला हल होगा नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके घर के घरेलू मसाइल भी होंगे, वालदेन के इनकम के मसाइल भी होंगे, और वो यूनिवर्सिटीज और हुकूमत इन सारे मसाइल को समझती है, तो जैसे वो अपने घर में भी तो एहतजाज नहीं कर रहे कि बाप से कहें कि पैसे ले जाओ, तो इसी तरह हमारा भी मसला है। और आई एम श्योर कि इस डिफिकल्ट टाइम्स में हर यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश यही है कि वो बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर दे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो किसी तरह का कोई एहतजाज करें जिससे जो ऑलरेडी असातिज़ा हैं, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझती हैं और वो आई एम श्योर कि दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू कम अप विद अ मॉडल व्हिच इज व्हिच कैन फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स।
तो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि जो उनके अगर वो हॉस्टल में बच्चा नहीं रह रहा तो उसको आप हॉस्टल की फीस या बिजली का बिल और जो दूसरे खर्चे हैं जो हॉस्टल के रहने के दौरान वो दे रहा था वो उनसे अब नहीं लिए जाएंगे?
एनईडी यूनिवर्सिटी का के बारे में मैं कह सकता हूँ, हालांकि वो कमरे उन बच्चों के नाम पे अलॉटेड है, उन बच्चों के सामान भी वहीं मौजूद है, लेकिन चूंकि वो फिजिकली नहीं आ सकते और ना ही हम इजाजत दे रहे हैं तो फिर उनसे वो पैसे चार्ज करना भी चाहते हैं।
ठीक,
अच्छा खासा एक वो होता है, फीस में भी हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, इंटरनेट की फीस भी चार्ज नहीं करेंगे, जो बच्चे क्या कहते हैं जो लाइब्रेरी की किताबें हैं उस पर भी कोई एडिशनल फाइन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि दो तीन महीने से किताबें अगर नहीं हुई है तो ज़ाहिर है ओवरड्यू हो जाती है, तो वो ज़ाहिर है वो सब वेव ऑफ करेंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हो सकती है वो हमारा फर्ज है कि बच्चों को फैसिलिटेट करें। यहाँ एक चीज की मैं और वजाहत करता हूँ कि मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की फीसें भी बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में यकीन फीसें ज्यादा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्योंकि प्रीडोमिनेंटली ग्रांट एंड एड फ्रॉम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स पर इन्हिसार होता है, तो इसलिए फीसों का भी बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता। लेकिन मैं ये लेकिन हैविंग सेड दैट आई डू अंडरस्टैंड कि जाहिर है कि पूरी दुनिया ही माली मसाइल का शिकार है, तो पाकिस्तानी बच्चे भी हैं।
तो ये बताइए कि इस वक्त जो ऑनलाइन एजुकेशन जारी है उसमें क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और इसकी क्या अफादियत है और आइंदा इसका क्या समझते हैं कि क्या रोल होगा या क्या रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का यूनिवर्सिटियों की सतह पर?
ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये हर किसी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता फिजिकल इंटरेक्शन का, लेकिन इस डिफिकल्ट हालात में हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, तो एक बड़ा ऑप्शन ये है कि हम बच्चों को इंगेज करें, क्योंकि बच्चों का फारिग रहना तीन तीन चार चार पांच पांच महीने गॉड नोज हाउ लॉन्ग लेट वो घरों में है, और मैंने जो दाएं बाएं मेरी सारी जो उम्र इन जवान बच्चे बच्चों में गुजरी है उनका ज्यादातर वक्त सारी रात जागने और सारा दिन सोने में आजकल गुजर रहा है, और उसकी वजह से जाहिर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों में हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में मुनासिब ना हो, तो इन बच्चों को एक तो मसरूफ रखना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि मसाइल तो है लेकिन हमने पहले हम लोग जो है वो जो ऑनलाइन सिस्टम में गए वो हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि मेरा ख्याल है कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज मोर और लेस हाइब्रिड सिस्टम पे जा रही हैं, जिसमें टीचर्स अपना लेक्चर अपलोड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल और फिर वंस अ वीक दे आर अवेलेबल ऑन लाइव टू आंसर क्वेश्चंस। और मुझे पता है यूरोप में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही है, यूएस में भी मोर और लेस ये सिस्टम हो रहा है, पाकिस्तान में हमने भी किया, हमने क्लासेस शुरू किए 1 जून से और वो जाहिर है कि ऑनलाइन सिस्टम पे जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक कनेक्टिविटी का ताल्लुक है वो जाहिर है जो बच्चे हमने पहले एक सर्वे किया था और उस सर्वे में हमने बच्चों से मालूम किया था कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं घर पे, तो पता ये चला हमारे पास कोई अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेंथ जो है वो 9,500 है, 9,500 में से 8,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 98% बच्चों ने अपनी अवेलेबिलिटी बताई किसी न किसी स्मार्ट डिवाइस की। वंस अगेन हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज्यादातर कराची के रेजिडेंट्स हैं, ज्यादा तो हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, कुछ बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम पे जाने का मकसद है वो भी यही है कि बच्चे जब भी उनके पास लाइट हो और इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो अपनी कन्वीनियंस से लेक्चर देख के डाउनलोड कर लें, इंस्टेड ऑफ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास शुरू होगी उस वक्त लाइट है कि नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और फिर बाद में वो लेक्चर मिस हो जाए, तो वो रेडीली अवेलेबल है, वो अपनी कन्वीनियंस से दिन में रात में जब चाहे उसको देख सकते हैं, और उसके बाद टीचर हफ्ते में एक दिन अवेलेबल होता है घंटे के उनकी क्वेरीज का आंसर कर। ये तो है उसका, इसके अलावा बजर है हमारा पोर्टल है उसमें बच्चे सवाल भी भेज सकते हैं और भेज रहे हैं। मुनासिब समझे तो यूनिवर्सिटी ही में आके लेक्चर रिकॉर्ड कराएं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज बेहतर है, लेकिन जो हालात है वो कोई बहुत अच्छे है नहीं, तो हमने टीचर्स को ये लिबर्टी दी है कि दे कैन डू इट फ्रॉम होम मेकिंग श्योर के प्रॉपर प्रोटोकॉल इज फॉलोड।
अच्छा, अब बात करते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी इस वक्त क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोविड से रिलेटेड कर रही है?
अच्छा, देखिए इसमें हम तीन चार चीजों में इस वक्त इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो चीज ये है कि मेरे कुलीग है डॉक्टर रियाजुद्दीन, उन्होंने एक वेंटिलेटर डिजाइन किया जो कि तय करता हुआ पहले में प्रूव की, और वो जब तक जब तक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उसको लाइसेंस न दे दे, और उसकी जाहिर एक स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 8-10 दफा उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए जो उसमें से क्लियर हो गए, एक फाइनल टेस्ट बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में किसी वक्त वो टेस्ट होगा और उसके बाद चीजें जो है वो बड़ी खुशाइन लग रही हैं और हम वी विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड वेंटिलेटर्स एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। हमें एक वेंटिलेटर को तकरीबन 5 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली पड़ना है और जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश यही है कि इस बुरी इस मुश्किल घड़ी में जो मिनिमम पॉसिबल खर्चे में हम हुकूमत को या किसी को वो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सके, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खिदमत होगी कौम की और मुल्क की।
तो कितने वेंटिलेटर कितने 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 वेंटिलेटर्स फराहम कर सकेंगे, आपके पास है वो गुंजाइश कि आप वो तैयार करके दे सकें?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा और हमारी काफी लोगों से इस सिलसिले में नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास जाहिर है फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 20 वेंटिलेटर पर वीक हम बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर लें। और ये यूं समझ लीजिए कि अगर 20 वेंटिलेटर एक वीक में है तो अगले 3 से 4 वीक में हम समझ लीजिए 50 से 100 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग डेटाबेस जो कि कोविड के और हमने डेवलप करके दिया है, जिसमें कोविड के पेशेंट्स का सारा डाटा जो है उस डेटाबेस पे होता है और उस डेटाबेस से फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तक चला जाता है। और उसके अलावा तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जो डाटा आ जाता है उसकी डाटा मॉडलिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या होंगे, फ्यूचर स्ट्रेस ऑन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो फ्यूचर ग्रोथ है पेशेंट्स की या क्रिटिकल पेशेंट्स की नीड फॉर वेंटिलेटर्स एंड अदर मेडिकल लाइफ सेविंग डिवाइसेस, तो उसपे सारी मॉडलिंग जो है वो हमारी एनडी यूनिवर्सिटी तीन प्रोजेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्व है। और चौथा प्रोजेक्ट तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो क्योंकि कोविड की वजह से सिंध असेंबली का इजलास जो है वो आज टूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट किया है और वो ऑनलाइन है, तो उसको तमाम तक टेक्निकल सपोर्ट जो है
तो इस तरह अब ये आइंदा का यही शेड्यूल रहेगा, यही अंदाज रहेगा और ये नहीं मालूम कि कब तक ये अंदाज चलेगा।
जी जब तक ये पेंडेमिक चल रही है, तो आज रेजोल्यूशन हुआ उसमें है कि जब तक ये पेंडेमिक चल रही है और इमरजेंसी सिचुएशन है इसी मोड में हाइब्रिड मोड में असेंबली के इजलास हो।
तो और ये तमाम जो ऑनलाइन फैसिलिटी है ये आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है?
जी जाहिर है उसका जो हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आईटी डिपार्टमेंट ने दिया है, लेकिन जाहिर है पीछे जो टेक्निकल सपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, उसके एसओपीस बनाना है, मेंबर्स को कनेक्ट करके चेकिंग करना है, ये सब चीजें जो है हम लोग एनईडी यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट फ्रॉम द सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट एंड आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कर रहे हैं।
तो डॉक्टर सरोज साहब आप ये बताइए कि इस वक्त आपकी जो यूनिवर्सिटी है एनईडी यूनिवर्सिटी, ये इनोवेशन जो रिलेटेड है कोविड से रिलेटेड इनोवेशन है, एक तो आपने वेंटिलेटर की बात की, उस पर मजीद क्या क्या काम करने का इरादा रखती है?
देखिए एचईसी जो है जहां तक मेरे इल्म में एचईसी रिसर्च को फंड करती है, डेवलपमेंट का फंड जाहिर है एचईसी के पास नहीं है। जो हमारे जहन में चीज है वो ये है कि जब हम एक प्रोटोटाइप को अप्रूव करा लेंगे इंशाल्लाह, तो जब प्रोडक्शन पे जाएंगे तो वी हैव टू बी इन पार्टनरशिप विद अ प्राइवेट कंपनी व्हिच हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज।
ठीक,
डिजाइन हमारा होगा, क्वालिटी एश्योरेंस हमारी होगी, उसके बैक एंड पे सॉफ्टवेयर हमारा होगा, लेकिन असेंबली जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू। इसमें कुछ एक आध ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता भी, कि जो जिन्होंने कुछ अपनी कंपनीज के सीएसआर के थ्रू कुछ फंड एलोकेट किए हैं और उन्होंने कहा है कि वो विदाउट प्रॉफिट हमें सपोर्ट करेंगे इन काइंड, जो हमें कंपोनेंट्स मंगाने होंगे वो हमें मंगा के देंगे और असेंबल वो करेंगे, दे विल नॉट ड्रॉप प्रॉफिट।
सही, तो जो एचईसी ने ये अनाउंस किया है कि हम जो भी कोविड से रिलेटेड इनोवेशन होगी उस पर सरमायाकारी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी सतह पर लेगी। बेहद शुक्रिया सरोज हशमत लोधी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर हैं और बड़ी तफसील से आपने जो इश्यूज इस वक्त सामने आ रहे हैं कोविड-19 के दौर में या कोविड-19 के हमले के दौरान, वबा के दौरान, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स को मसाइल पेश आ रहे हैं, फीसों के मसाइल हैं और जो दूसरे मसाइल हैं उनके बारे में. आपका बेहद शुक्रिया. थैंक यू.
आपका बहुत शुक्रिया.
थैंक यू.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ. आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन की, और वो मसाइल जो स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के हासिल करने में, और जो असातिज़ा को पेश आ रहे हैं अपनी टीचिंग के सिलसिले में, और जो इंतजामी मसाइल पेश आ रहे हैं उन पर भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के वाइस चांसलर जनाब इश्तियाक अहमद सरगोधा से टेलीफोन पर. उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं. अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक अहमद साहब.
सलाम, शुक्रिया.
इश्तियाक अहमद साहब, इससे पेशतर कि मैं आपसे मजीद तफसीलात पे जाऊं, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूं, शुरू करूंगी अपना इंटरव्यू उस मसले से जो कि आजकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सामने ला रहे हैं. उनका ये कहना है कि इस वक्त जबकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जो ख़ासतौर पर जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं और वो फैसिलिटीज़ जो उनको हासिल नहीं हैं, जो उनको अवेल नहीं हो रही, उन पर उनको चार्ज किया जा रहा है. तो पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है कि स्टूडेंट्स को चार्ज किया जा रहा है उन फैसिलिटीज़ के लिए जो उनको अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान?
नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन में ज़ाहिर है कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो तालीमी इदारे हैं उनको ये एक चैलेंज सामने आया, और इस चैलेंज को ज़ाहिर है हेड ऑन लेना था. अब कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इसको हेड ऑन लिया और इसमें ब्रेक नहीं आया स्टडीज के अंदर, बाकियों ने अभी शुरू किया है. तो एक तो बात यह है कि जहाँ तक प्रोविजन ऑफ एजुकेशन है तो उसमें ज़ाहिर है कि हम हमारी हत्तुल मकदूर कोशिश होती है कि क्वालिटी सफर ना करें. तो जाहिर है कि इसके अंदर चैलेंजेस हैं. बिल्कुल ये हो नहीं सकता कि हम आर्ग्यू करें कि जी 100% क्वालिटी मेंटेन हो रही है, इट विल टेक टाइम. लेकिन ये कहना कि ये इसमें फैसिलिटीज हम ऑफर नहीं कर रहे, फैसिलिटीज देखें ना, वो तो एब्सोल्युटली यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल गई जूम की. फिर उसको एक्सटेंड करने के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस लिए. जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का ताल्लुक है वो रियासती इशू है, और उसमें पाकिस्तान में कंपैरेटिवली स्पीकिंग जो और कंट्रीज इन साउथ एशिया में हमारे हालात इतने बुरे नहीं है.
लेकिन ये जो इशू है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और इस वक्त वो हॉस्टल के कमरों में नहीं रह रहे, उनसे क्या कमरों के चार्जेस लेना या उनसे बिजली के बिल लेना या उनसे ट्रांसपोर्ट के बिल लेना या लाइब्रेरी के बिल लेना जो किताबों के लिए वो देते हैं, वो मुनासिब है?
देखिए, हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं और खास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, हमारा तो वैसे भी जो अपना चार्जेस है बड़े मिनिमल है, बिकॉज स्टेट यूनिवर्सिटी है तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकते. तो हमारा जनरली जो अपना वो है ना स्टैंडर्ड्स वो है. तो जो ब्रेक अब बीच में आया, जाहिर है कि एक हमारा पेपरा रूल्स हमें हमारा कंडक्ट गवर्न करते हैं, तो अगर फीस के अंदर भी जो मुआफी है या जो चीजें हैं वो सिंडिकेट डिसाइड करती या हायर लेवल गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन होता है. तो जब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हमें आएंगी, अगर वो कहें कि जी बिल्कुल चार्ज ही नहीं करना तो हम चार्ज नहीं करेंगे. तो हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेट इदारों से बहुत फर्क है, बिकॉज ओवरऑल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है. तो जो डायरेक्शन वहां से आएगी, अगर भला वो कहे कि जी फीस नहीं करनी चार्ज तो हम नहीं करेंगे, जो एकेडमिक कंट्रोल है वो हायर एजुकेशन कमीशन का है. तो ऐसी कोई अभी तक गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम नहीं की कि कोई एक्सेप्शन ड्रॉ की जाए. लेकिन जाहिर है कि हम अपने तौर के ऊपर जो भी, अब जाहिर है कि इस सिचुएशन के अंदर खास तौर पर चूंकि एक मुआशी क्राइसिस भी है और हेल्थ का क्राइसिस भी है, और उससे फैमिलीज भी बड़ी डिसरप्ट हुई है, तो हम अपना पहले भी हमारा एक फी कंसेशन का या और कुछ तकरीबन फुल फी कंसेशन और थोड़ा सा पार्शियल रिलीफ हमारा ट्रेंड यहाँ पे था, उसमें मैंने 3-1 महीने में देखा है कि कुछ ज्यादा उसके अंदर एप्लीकेशंस भी आई हैं, और हमारा चूंकि जनरली एक कम्युनिटी सर्विस की एक ट्रेडिशन है यूनिवर्सिटी का, और हम व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स, तो अगर जहां हातुल मजदूर हो नीड बेस्ड के ऊपर हम एक्सेप्शंस ड्रॉ करते रहते हैं।
लेकिन वो जो स्टूडेंट्स कमरों में नहीं हैं, क्या आप उनके कमरों के किराए उनसे वसूल करेंगे? सवाल उनका सिर्फ यही है।
हाँ, वो तो देखे एक मीगर अमाउंट होती है अपना स्पोर्ट्स की या बुक्स की या लाइब्रेरी की, वो जो उसका अपना सेमेस्टर की वो ड्यूज देते हैं, तो सेमेस्टर ड्यूज में तो अभी तक मेरे ख्याल में कोई ऐसी कंसेशन नहीं हुई। तो अगर वो हॉस्टल्स में नहीं रह रहे तो जाहिर है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे कि आप अपना इसको एक एक्सेप्शन ड्रॉ करें, खास तौर पे जो ये 2-3 महीने या 4 महीने का पैक जो बन रहा है अपना। बिजली का बिल भी कोई नहीं है और भी यूटिलिटी भी कोई रह ही कोई नहीं रहा, वो तो हमारी जो अपना हमारे जो हॉस्टल्स है कम अज कम एग्रीकल्चर के अंदर और मेडिकल के अंदर वो क्वारंटीन फैसिलिटीज बने हुए हैं करंटली, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया हुआ है। बाकी जो मेन कैंपस के अंदर है तो वो हम अपना उसको रेनोवेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पे कोई भी कॉस्ट जब स्टूडेंट वहां पे रहता है ना जी, उस वक्त बिजली का बिल अब चूंकि रह ही नहीं रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में किसी कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं कि जहाँ पे ये इश्यूज है, इसीलिए ये मामला यानी उठा है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा इशू है हमारे केस में।
ठीक, तो आपके सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि दूसरी कुछ यूनिवर्सिटी में?
मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर इस तरह का इशू हुआ तो चूंकि हम स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है तो हम इसमें एक्सेप्शन ड्रॉ करेंगे एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, और लेकिन हम दूसरों पे प्रिवेल नहीं कर सकते।
तो ये बताइए कि अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं कि इस वक्त आपको एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ी, तो क्या आप उसके लिए पहले से तैयार थे या इस वक्त आप कुछ सीख चुके हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को अपने असातिज़ा के एतबार से, अपने स्टूडेंट्स के एतबार से?
देखिए, असल में लीडरशिप का जो टेस्ट आता है ना वो आता है क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर, तो उसमें मेरी तो पर्सनल बिलीफ यही रही है हमेशा से कि असल में जो चैलेंज या क्राइसिस होता है ना वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है। हमने राइट इन द बिगिनिंग जब इन्होंने सेकंड वीक ऑफ मार्च लॉकडाउन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, तो हमने डिसाइड किया इस पे काफी अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने ये डिसाइड किया कि हम जो स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा था रनिंग, हम उसको ब्रेक नहीं देंगे, और वो डिपार्टमेंट्स जो के ऑनलाइन रेडी थे, फैकल्टी ऑनलाइन रेडी थी, तो हमने एक हफ्ते के अंदर उनको हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। साथ में हमने बाकी को अगले हफ्ते हमने सब फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स को कर लिया, सो विद इन 2 वीक्स वी वर ऑनलाइन, हमारा सेमेस्टर में ब्रेक नहीं आया। तकरीबन 3 हफ्ते हमने फिर एक्स्ट्रा भी बीच में लगाए, और हमने मई के अंदर तमाम हमने कोर्सेज पढ़ा लिए, तकरीबन 5-1 हज़ार कोर्सेज थे। हमने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दी कि जिनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं है या स्लो स्पीड है तो वो ये सेमेस्टर फ्रीज करा ले, जो उन्होंने फी पे की है वो जाहिर है कि हम काउंट कर लेंगे अगले जब भी वो कोर्सेज लेंगे या सेमेस्टर समर में लगाए। हमें अच्छा ये हुआ कि वी वर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, वो हमें अभी रियलाइज कर ले, बिकॉज अब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने डिसाइड किया था कि जी नहीं हम अपना बाद में करेंगे शुरू, बाय मिड जुलाई हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपना असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन भी लेंगे, और जाहिर है प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए डिफरेंट कुछ क्राइटेरिया हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो बल्क ऑफ कोर्सेज है उसमें असेसमेंट मॉड्यूल हमने इस तरह क्रिएट किया और उसे हमने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमने इन कॉन्फिडेंस किया है वो कि हम इसको MCQs जो कि मोबाइल फोन के ऊपर ही हम कर सकेंगे, और प्लस एक अपना वाइवा वॉइस जो कि इंडिविजुअली टीचर जूम के थ्रू स्टूडेंट से लेगा। सो
इसमें इसमें नहीं, इसमें शफाफियत का तो चैलेंज आ सकता है ना कि
नहीं नहीं, इस देखे हर चीज का एक कोई ना कोई हर चीज की सोल्यूशन है। इस वक्त एक ऐप भी बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के कुछ, मैंने एक टारगेटेड ड्यूटी लगाई हुई है, असेसमेंट एग्जामिनेशन इज अ वेरी रिस्की मैटर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करके हम थोड़ा सा एक ऐप बना रहे हैं कि कोशिश करें कि कोई चांसेस ऑफ चीटिंग वो हो ना सके।
और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें वैसे ही पास कर दो, इम्तिहान ना लो, कुछ कहते हैं
नहीं, 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 नहीं,
डिले करो।
ये देखो ना, ये असल में ये बात है ना, मतलब इस तरह हो नहीं सकता। मैंने वो भी वो जो ऑप्शन थी तेरी ओपन बुक एग्जाम, भाई इस इलाके में ये ट्रेडिशन नहीं है ओपन बुक। ओपन बुक वहां पे होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है 20-25 किताबें पढ़ते हैं इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे आपके पास दो एक टेक्स्ट बुक्स है, आप रटा लगाते हो, मतलब इस तरह तो नहीं। हमने देखनी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। वी नीड टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स कि जो हमें जब इंटरव्यू देने जाए किसी में डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि भाई किस इदारे से ये ग्रेजुएट होके आए। ठीक है ना। वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिव ग्रेजुएट्स, स्किल लेवल उनका स्किल सेट दे के हम निकाले। तो जाहिर है कि उसके अंदर हमारी कमिटमेंट होगी कि हम स्मूथली एक अपना उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर करें। टीचर की कमिटमेंट है कि वो जो उसको एक टास्क मिला है कि भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या क्रिटिकल थिंकिंग को शार्प करने का, उसको वो बिल्कुल हाथुर पूरा करे। स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि इधर उधर भागे नहीं चीजों से, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो उनको अपना बाकायदा कोलैबोरेट करना चाहिए हमारे साथ यूथ को, भाई ये इस चैलेंज को हम अबूर करें और हेल्प अस आउट। वो हमें हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि भाई उनके पास अभी बड़ा फारिग वक्त है, आराम से बैठ के किताबें पढ़े। पहले अगर 2 पढ़ते थे तो 20 पढ़े, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी से उनको फायदा उठाना चाहिए कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम एट होम टू फोकस ऑन स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के, और आपने बड़ी तफसील से बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी इस वक्त जो ऑनलाइन एजुकेशन का चैलेंज है उससे कैसे निमट रही है, और अब उसके स्टूडेंट्स के इम्तिहानात के चैलेंज को भी आप उस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मुनासिब तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हल हो जाए। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ऑनलाइन एजुकेशन के स्टूडेंट्स की और भी बहुत सी शिकायत हैं जो उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन तक पहुँचाई हैं। उनकी शिकायत पर हायर एजुकेशन किस तरह तवज्जो दे रहा है, इस बारे में मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं HEC की क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नादिया ताहिर। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि तालिब इल्मों की जो शिकायत उन तक पहुंची वो क्या क्या हैं, और उनके इजाले के लिए हायर एजुकेशन कमीशन क्या कुछ कर रहा है, और ये भी कि हायर एजुकेशन में उनकी एजेंसी ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी को किस तरह बरकरार रखे हुए है। तो बात करते हैं जी डॉक्टर नादिया ताहिर साहिबा।
शुक्रिया यास्मीन। हमारा बुनियादी काम है कि सिस्टमैटिकली मॉनिटर एंड एवेल्युएट करें कि टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम्स इन पाकिस्तान कैसे काम करें, और इसके लिए हम इंडिपेंडेंट रिव्यूज के जरिए यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां पे उनके सिस्टम इन प्लेस को देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उन्हें सजेशंस देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव। COVID-19 ने एक चैलेंज थ्रो किया फॉर द एजुकेशन सिस्टम्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, फॉर मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वहां पर डिस्टेंस लर्निंग के कोई खास तैयारी नहीं थी, तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि तालीम लोगों तक, मुनासिब तालीम, बेहतर क्वालिटी की तालीम पहुंचाई जाए, और दूसरा चैलेंज ये था कि डिस्टेंस लर्निंग के सिस्टम्स को भी बेहतर किया जाए। तो सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी रेडीनेस का एक कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें हमने एक असेसमेंट की कि यूनिवर्सिटीज में LMS इंस्टॉल्स हैं या नहीं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या नहीं, और हमने एक सर्वे किया तमाम यूनिवर्सिटीज का, और उसमें हमें पता चला कि तकरीबन 1/4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास इस वक्त LMS है। और इसके अलावा दूसरा इशू जो हमें पता चला, एक्सेसिबिलिटी का पता चला कि बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, और इसमें कुछ आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके, कुछ इंटीरियर पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके, और फाटा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, और कुछ शहरों में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी। तो हायर एजुकेशन कमीशन ने सबसे पहले कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज को फैसिलिटेट किया थ्रू प्रोवाइडिंग लाइसेंसेस एंड थ्रू हेल्पिंग देम इन इंस्टॉलिंग LMS इन द यूनिवर्सिटीज। एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई जिसका काम था कि यूनिवर्सिटीज को इस सिलसिले में रहनुमाई फराहम करे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हमने तालीम को जारी रखने के लिए उन तमाम यूनिवर्सिटीज को जिनके चार्टर में भी नहीं था कि वो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू तालीम दें, हमने उन तमाम यूनिवर्सिटीज को इजाजत दी कि अगर उनकी बुनियादी तैयारी है, यानी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके पास ये असेसमेंट मौजूद है कि उनके स्टूडेंट्स तक ये तालीम इंटरनेट के जरिए या डिस्टेंस लर्निंग के जरिए मुख्तलिफ जरिए से पहुंच सकती है, उनको वो तालीम दें। यूनिवर्सिटीज ने जब ये शुरू किया तो ये हमारी टीचिंग पैडागोजीज और टीचर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, और इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने टीचिंग प्रिपरेशन या टीचिंग प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी अपनी काविशें जारी रखी, और हायर एजुकेशन अकेडमी हायर एजुकेशन ही जिसे हम कहते हैं, उसने तकरीबन आज तक 23,000 को ऑनलाइन टीचिंग की ट्रेनिंग फ्राहम की है। फिर आ गया स्टूडेंट्स रेडीनेस, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, लेबोरेटरी रेडीनेस, असेसमेंट मैकेनिज्म्स एंड टीचिंग पैडागोजीज, इसके ऊपर भी हमने उनके साथ मशावरत की, तमाम वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग्स की। तकरीबन इस सिलसिले में हमने 6 से ज्यादा मीटिंग्स वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, काउंसिल्स के साथ मीटिंग्स की, स्टेक होल्डर सबको ऑन बोर्ड लिया, कंसेंसस के साथ हमने 6 गाइडलाइंस इशू की, और इसमें आखिरी गाइडलाइन 6A जो है वो थीसिस और रिसर्च के ऊपर मबनी है। इन गाइडलाइंस में हमने यूनिवर्सिटीज को वेरियस ऑप्शंस दिए कि वो किस तरह से तालीम को बेहतर तरीके से जारी रख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के 3 कंसर्न जैसे आपने शुरू में अर्ज की, तो वो गुजारिश ये है कि वो 3 कंसर्न ये थे कि तकरीबन 10 से 15% तलबा ऐसे हैं जिनको कनेक्टिविटी में इश्यूज हैं और उन तक तालीम ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। तकरीबन 5 से 10% स्टूडेंट्स ने एवेल्युएट किया अपने टीचर्स को कि उनके लेक्चर्स जो हैं ऑफ नॉट अप टू द मार्क, उनकी क्वालिटी ऑफ डिसेमिनेटिंग नॉलेज इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, तो उनके बारे में स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की। फिर उन्होंने कहा कि असेसमेंट का कोई तरीका नहीं है। और चौथा इसमें यह है कि फी हमसे उन सहूलतों के बारे में भी यूनिवर्सिटीज लेनी है जिन्हें हम अवेल नहीं करें, जिसमें स्पेशली हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन ने इन तीनों एक यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड लिया। ग्रीवियंस सर्वे स्टूडेंट्स का कंडक्ट करने का हमने गाइडलाइन नंबर 5 में कहा कि तमाम स्टूडेंट्स का ग्रीवियंस सर्वे किया जाए कि उनको किन इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से कनेक्टिविटी का हमने सेंसस करने का कहा तमाम यूनिवर्सिटी से कि तमाम यूनिवर्सिटी हर तालिबे इल्म से पूछेगी कि उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकता है। और तीसरा हमने फी के लिए वाइस चांसलर साहिबान से दरख्वास्त की कि अगर आप अपने हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ऐसी तमाम सहूलियात यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को नहीं दे रही हैं, उनकी फी चार्ज ना करें, तो वाइस चांसलर साहिबान हमारी इस बात मुतफिक हुए और उन्होंने अपनी फीस में रिडक्शन के ऐलान किए। कुछ यूनिवर्सिटीज चूंकि पहले ले चुकी थी फी, तो उन्होंने ये हमसे वादा किया है कि अगर किसी ने हमें फी दी है तो हम यहाँ एडजस्ट ये अगले सेमेस्टर में रीइंबर्स कर देंगे। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि हमारे ग्रेड्स खराब हो जाएंगे, तो हमने उनको ये ऑप्शन भी दिया कि इसको हम नॉन क्रेडिट सेमेस्टर का नाम देंगे, जिसमें उनके पास ये ऑप्शन है इम्तिहान लें, उनको पास या फेल करें, लेकिन CGPA कैलकुलेशन में इस ग्रेड को कैलकुलेट ना करें, ताकि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के ऊपर, ताकि वो अगले जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन पे असर ना हो। तो ये वो कुछ काविशें हैं जो हम जारी रखे हुए हैं। इसमें स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स हैं, स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बात की है और ये मुतालबा करते हैं कि हमें बगैर इम्तिहान के अगले सेमेस्टर में जाने दिया जाए, क्योंकि तालीम की क्वालिटी कुछ जगहों पर बेहतर नहीं थी। हमारी उनसे जो कल भी बातचीत हुई, हमने उसमें उनसे यही अर्ज किया कि तालीम के इस मरहले पर जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होगी कि हम इम्तिहान के स्टूडेंट्स को पास करें। तो इम्तिहान लेकिन हम चूंकि रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में है जहाँ ग्रेड्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं, तो आप बात की फिक्र ना, होंगे, बल्कि आप इस बात का फिक्र करें कि आप अपनी दिल जमाई से पूरा पढ़ें और स्टूडेंट्स तक वो तालीम पहुंचे जो हम चाहते हैं कि वो हासिल करें और उनकी स्किल्स बेहतर हो। तो ये हम बात स्टूडेंट्स तक आपकी वसादत से भी पहुंचाते हैं और यूनिवर्सिटी से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के इन कंसर्न्स का ख्याल करें।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर नादिया ताहिर साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी की, जो हायर एजुकेशन कमीशन का ही एक शोबा है। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में